نمونم سلیر رسولی کنم عوض بالله شد مرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواهدی بن ازاد. لاسٹ ٹائم یہ ایک سوال بچ گیا تھا ان صاحب کا کہ منصور الحلاج کے اور ان کے مرشد کے بارے میں تو آپ نے بیان کیا تھا، پلیز ان کے عشق اور طرف کے بارے میں اگر مناسب سمجھیں تو مزید بیان فرما دیں. ان کے بارے میں ایک روایت جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم کے کسی بہت بڑے پر، البتہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ روایت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس حد تک صحیح ہے، کہ ان کی ہمشیرہ صاحب علم تھی بہت، تو ان کو خبر دی گئی کہ آپ کی ہمشیرہ رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو جنگل میں چلی جاتی ہے، تو یہ جاگتے رہے اور لیکن پریٹینڈ یہی کرتے رہے کہ سو رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی ہمشیرہ محترمہ اٹھیں اور اٹھ کے گھر سے باہر نکل گئیں، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے. انہوں نے دیکھا کہ جنگل میں جا کے ایک جگہ کچھ کلیئرنگ تھی، وہاں بیٹھ گئیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں. تو صبح اذان سے پہلے وہاں روشنی ان کے ارد گرد پھیل گئی اور ایک فرشتہ آیا جس نے انہیں ایک پیالہ پینے کو دیا. تو وہ پی رہی تھیں تو یہ چلے گئے اور جا کے بہن سے وہ پیالہ لے کے سارا خود پی گئے. تو اس کے بعد ہوش و حواس ان کے کھو گئے اور اس مستی کے عالم میں یہ ان الحق کا نعرہ لگاتے رہے. میں ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی یونیورسٹیز میں لیکچرز پہ بھی اور ٹی وی پروگرامز میں بھی، تصوف میں پڑھے لکھے ذہن میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں تصوف کے بارے میں، وہ غالباً ایسی ہی روایات کو پڑھ کے یہ چیز آتی ہے. لیکن اگر ہم ان روایات کو کچھ اس طرح سے لینا شروع کر دیں کہ یہ روایات در حقیقت کسی بھی بات کو آسان کر کے سمجھانے کی خاطر ہے، تو جیسے ترکی کے ایک بڑے وائز مین گزرے ہیں مولانا نصر الدین، وہ چٹکلوں کی صورت میں بڑی بڑی عقل کی باتیں بیان کر دیتے رہے ہیں. لطیفے ان کے بڑے مشہور ہیں، لیکن وہ لطیفے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سبق سکھاتے ہیں. مثلا ان کا ایک قصہ ہے کہ جس زمانے میں مولا نصر الدین ہوئے ہیں उस जमाने में तुर्की में गधा सवारी के तौर पे बड़ा इस्तेमाल होता था और काफले सफर करते थे गधों ही पर। तो मुल्ला नसुद्दीन अपने गधे पर सवार जा रहे थे, तो गधे की एक आदत है कि अगर पहले से गुजरे हुए गधे की ड्रॉपिंग्स पड़ी हों तो वो वहां रुक के सूंघता जरूर है। अब वो गधा थोड़े थोड़े फासले पर, चूंकि काफले की राह गुजर थी तो वहां गधों की ड्रॉपिंग्स पड़ी हुई थी, तो थोड़े थोड़े फासले पर गधा रुकता था, सूंघता था, उसको सूंघने के लिए नीचे झुकता था। तो मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ी तकलीफ होती थी बैठे हुए उस पर। तो जब तंग आ गया मुल्ला नसरुद्दीन तो अपने नीचे उतरे, अपने सामान में से एक थैला निकाला और जिस ड्रॉपिंग्स को वो सूंघता था गधा, वो ये उठा के उस थैले में डाल लेते थे। शाम हो गई, एक सराय में पहुंचे, तो उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक सराय के साथ स्टेबल्स होते थे जहां मुसाफिर अपने गधे बांध देते थे। तो इन्होंने उस स्टेबल में अपने गधे को बांधा और वो थैला उसके मुंह पर चढ़ा दिया। वो गधे ने उछल कूद मचाई, दूसरे जो मुसाफिर आ रहे थे स्टेबल में अपने गधे बांध रहे थे, तो उन्होंने इसे कहा कि अजीब जालिम आदमी हो तुम, ये बेचारा बेजुबान जानवर है, सारा दिन इस पर तुमने सवारी की है, चला है, ये अब थक गया, इसके आराम का वक्त है और तुमने उसके मुंह पर ये थैला चढ़ा दिया है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं जालिम नहीं हूं, बात यह है कि ये जो गधे की ड्रॉपिंग्स हैं ये सिलेक्ट इसने की है, मैंने तो सिर्फ उन्हें इकट्ठा करके इसके मुंह पे चढ़ा दिया, तो चूंकि ये सिलेक्शन इसकी है तो अभी इसके इसे भुगतना चाहिए। अब ये है तो एक जोकनुमा हिकायत, लेकिन इसमें एक बड़ा सबक छुपा हुआ है कि इंसान को सिलेक्शन करते वक्त चीजों की मोहतात रहना चाहिए कि गलत चीजें ना चुन ले, कि बाद में उसको खुद उससे तकलीफ होगी, वो एक सबक है। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन का एक अंदाज था। इसी तरह मौलाना रोम ने हकायात के जरिए से बड़ी बड़ी अकल और पते की बातें सिखाई हैं। तो तसव्वुफ में ये जो इस किस्म की चीजें आ गईं, ये भी मेरा अपना अंदाजा है कि ये असल में तालीम देने के लिए ये हकायात हैं। हम लोग किसी फकीर के पास चले जाते हैं तो फकीर अगर किस्मत का मारा बेचारा अपनी शामत को आवाज दे बैठे और वो अपने पास आए हुए आदमी को कुछ पढ़ने को दे दे, तो होता ये है कि आदमी जब भी उस फकीर के पास जाएगा तो सबसे पहली बात ये करेगा, जी आपने मुझे वो पढ़ने को जो बताया था मैं पढ़ रहा हूं। अब फकीर में मरव्वत होती है, एक लिहाज होता है उसके अंदर, तो बेचारा सुनता रहता है। लेकिन अगर सख्त हो मेरे मुर्शिद साहब जैसा, ये गलती एक बार मैंने भी की थी कि उन्होंने कुछ पढ़ने को बताया, मैं पढ़ रहा था, तो मेरे ख्याल साल छह महीने के बाद कहीं गलती से मेरी जुबान से निकल गया कि साहब आपने मुझे पढ़ने को ये बताया था वो मैं पढ़ रहा हूं, तो एक सीधा जवाब आया कि मत पढ़ो, मुझ पर एहसान करते हो, अपने लिए पढ़ रहे हो। वो एक तरबियत थी कि जो कुछ मुर्शिद ने बता दिया बस फिर पढ़ते रहो, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं कि आपने मुझे ये पढ़ने को बताया था। तो ये मुर्शिद का फैसला है कि उसने फर्दर आपको कब पढ़ने को बताना है। ये जो हिकायत है इसके जरिए भी यही असल में एक सबक है कि जो समझदार मुर्शिद है वो अपने शागिर्द को बहुत मयर्ड नपीतुली डोज में डोज देता है इल्म की, जिसको वो आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। अगर वो यकलक दे देगा तो वो इल्म उसके संभाला नहीं जाएगा, नतीजा ये होगा कि वो लोगों के सामने बयान करेगा कि मेरे पास ये है, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मेरा जो उसकी रुसवाई का सबब बन जाएगा। तो अगर मयर डोज मिलेगी उसे, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें वालदैन स्कूल में दाखिल कराते हैं कि हमारा बेटा फलां सब्जेक्ट में मास्टर्स करके तो ये जॉब पर चला जाएगा। तो वो प्री स्कूल से शुरू होता है बच्चा, तो रफ्ता रफ्ता इल्म हासिल करता रहता है और एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता जाता है, हत्ता के वो फिर मास्टर्स कर लेता है। इस शिकायत से पता यही लगता है कि अगर यकलख्त इल्म मिल जाए किसी को तो उसे संभाला नहीं जाएगा, तो आपे से बाहर हो जाएगा आदमी। तो हम इन रवायात को अगर इस एंगल से देखें कि इसके अंदर क्या सबक हमारे लिए छुपे हुए हैं, तो उससे हम बहुत कुछ गेन कर लेंगे। तो इनकी तड़प, तो उसका एक जवाब है कि ये गाइडेंस के उस मकाम पर चले गए, बगैर गाइडेंस के उस मकाम पर चले गए थे जो इनसे फिर संभाला नहीं गया और आपे से बाहर हो गए और अपने आप नारे लगाते रहे अनल हक के, बिलाखिर फिर इनका ये है।
शाह साहब, ये मयर डोज 16 साल के बाद प्री स्कूल शुरू होके, तो 16 साल के बाद वो मास्टर की डिग्री मिल जाती है, तो ये मयर डोज हम कितने साल लेते रहेंगे और पीर और फकीर के ऊपर ये सोसाइटी डिपेंड करती रहेगी? शाह साहब, ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए, दाता गंजबख्श आए, बाबा फरीद आए, मौलाना रोम ने भी बड़ी तालीमात दी, आजकल बहुत से मदरसे भी खुले हुए हैं, उन्होंने बहुत से गैर मुस्लिम को इस्लाम में मुसलमानों में कन्वर्ट किया, लेकिन क्वालिटी बिगड़ती ही गई, नीचे रही। हम ये पीर, ये फकीर या ये जो आराम फरमा रहे हैं ये लोग, वो सोसाइटी क्यों नहीं बना सके जो यहूदी ने बना दी, डिसिप्लिन्ड, प्रोग्रेसिव, वेल सिविलाइज, जो क्रिश्चियन ने बना दी, ये क्यों? और ये सिलसिला कब तक, हाउ लॉन्ग विल बी डिपेंडेंट? ये शाह साहब,
बात ये है कि जिस जमाने में ख्वाजा गरीब नवाज साहब जैसे बुलंद पाया बुजुर्ग, जनाब दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसे बुलंद पाया बुजुर्ग ये गुजरे हैं, उस जमाने में मुसलमानों का हाल ये नहीं था जो आज है। जब भी कहीं تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بندوبست نہیں ہوگا وہاں نتائج ہمیشہ یہی نکلیں گے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم تو رہ گئی لیکن تربیت غائب ہو گئی. یہ جو میئر ڈوز اور 16 سال کی تعلیم اور اس کے حوالے ہیں وہ اصل میں ہے ہی تربیت کے ریفرنس سے کے ساتھ ساتھ تربیت کی جاتی ہے. تو جب ہم کسی فقیر کے پاس جاتے ہیں تو وہ تعلیم سے زیادہ تربیت پر زور دیتا ہے اپنے پاس آنے والوں کی. کبھی آپ دیکھیے فقیروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں گرچہ وہ دنیاوی طور پہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں. ان کے پاس دنیاوی مال و زر اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن آپ انہیں سمہار دیا در بہت اعلی قسم کے انسان پائیں گے. تو جب تربیت کو ہم غائب کر دیں گے پھر یہی کچھ ہوگا. اور دوسرا جو ایک پرابلم ہمارا ہوا ہے, ہمارے یہاں جو ماس میڈیا ہے وہ بڑا افیکٹو ہے. اور وہ ہمارے یہاں جو ماس میڈیا وہ ہے مسجد کا ممبر. مسجد کے ممبر سے جو تعلیم ہم ڈش آؤٹ کریں گے وہ بہت اثر رکھتی ہے. تو مسجد کے ممبر سے جو ہم نے تعلیم دینی شروع کی وہ تو اس طرح سے کر دی کہ اسلام کا جو ریچولز کا حصہ ہے, عبادات کا حصہ ہے, ہم نے صرف اسی پر زور دیا ہے مسجد کے ممبر سے. لیکن جو زیادہ بڑا حصہ ہے دین کا وہ ہے دوسروں کے ساتھ انٹریکشن, اس پر زور بالکل نہیں ہم نے دیا. نتیجہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہم نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. ایک تو عبادات کا حصہ ہے, ریچولز کا حصہ ہے, اور دنیا کو وہ دین سے علیحدہ کر کے لے گئے ہم. جبکہ دین میں, دین اسلام میں ہماری دنیا بھی پابند ہے دین ہی کی. جو ہمارے انٹریکشن ہے, جو کاروبار زندگی ہے ہمارا, وہ پابند ہے دین کا. وہاں ہم چھوڑ گئے چیزوں کو. اپنا ذرا سا کام نکلوانے کے لیے ہم بے دریغ جھوٹ بول دیں گے, دھوکہ دے دیں گے, اور اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے. سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہو گیا کہ ان چیزوں کو ہم برا نہیں سمجھتے. یہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ممبر کو ہم استعمال کریں, مسجد کے ممبر کو, اور وہاں سے ہم تربیت کا عنصر لائیں اپنی گفتگو میں, جس کے ذریعے سے ہماری تربیت ہو کہ ہماری دنیاوی زندگی پابند ہو دین کی. جو دین نے اصول دیے ہیں ہماری دنیاوی زندگی اس کی پابند ہو جائے. हमारे पास तो सबसे बड़ा एक लाइट हाउस मौजूद है, जैसे समुन्द्र में तूफान में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउसेस होते हैं, हमारे पास दुनिया का अजीम तरीन लाइट हाउस है, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, सुन्नत, सीरत। तो अगर हम दुनियावी जिंदगी को उन लाइंस पर ले जाएं, तो बेहतरीन दुनियावी जिंदगी हो जाएगी, तो फिर ये गिला नहीं होगा कि ये सब कुछ होने के बावजूद गली गली मोहल्ला मोहल्ला दर्स होने के बावजूद हम किधर को जा रहे हैं। ये किसी साहब का एक सवाल है कि ब्राउन फंड्स, पल्सार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स सितारों की अकसाम हैं, जो कि सब की सब एटम्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी फासले को कमी बेशी से मौरज़ वजूद में आते हैं। सिर्फ ब्लैक होल्स है जिसमें एटम अपना वजूद खत्म कर देता है, लेकिन बहरहाल सब के सब मैटर ही रहते हैं। दुरुस्त समझाओ। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। सिर्फ इसके अंदर एक चीज चेंज कर लीजिए थोड़ी सी, कि सब के सब मैटर ही रहते हैं। जब ये तबाह होते हैं तो फिर ये मैटर नहीं रहते। हाँ, अलबत्ता इनमें एक पार्टिकल है जो जिंदा रहता है, और जो आज से 25 साल पहले रिसर्च हुई उसके मुताबिक वो पार्टिकल तबाह नहीं होता, वो हर हाल में जिंदा रहता है, कायम रहता है। इसलिए साइंटिस्ट हजरात ने उसका नाम गॉड पार्टिकल रखा, इट इसको फना नहीं है, बाकी सब चीजों को फना है। आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं, सिर्फ ये जरा सी करेक्शन कर लीजिए कि मैटर कायम नहीं रहता, मैटर तबाह हो जाता है। अलबत्ता एक पार्टिकल है उसके अंदर जिसको साइंस ने नाम दिया है गॉड पार्टिकल का, वो फना नहीं होता, वो कायम रहता है, इसलिए उसको साइंटिस्ट हजरात ने गॉड पार्टिकल का नाम दिया। इनका दूसरा सवाल है कि क्या बाकी 7 जमीनें किसी और किस्म की रॉ मटेरियल से बनी हैं? बिल्कुल दुरुस्त है कि जमीन की जो 7 तहें हैं वहां जो मैटर्स फैले हुए हैं वो सब के सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तीसरा इनका सवाल यह है कि सदरत मुंतहा को क्रॉस करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैटेरियलिस्टिक फॉर्म को फौकियत दी क्यों? ये मेरे इल्म में नहीं है ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फौकियत दी थी, या रब ताला ने यूं चाहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ ले जाएं अपने दुनियावी जिस्म के साथ? मेरी अंडरस्टैंडिंग में यह है कि रब ताला ने यूं चाहा था कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लें मुजस्सम हालत में, और वहां हम कलाम उनके अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम हालत में वहां हम कलाम हो जाए। लेकिन ये मेरे इल्म में नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फौकियत दी थी। इनका चौथा सवाल है कि क्या जन्नत और दोजख किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी से बनी है? इसका जवाब स्ट्रेट है कि जी हां, लेकिन किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से, वो इंसानी अकल से बईद है उसको समझना। वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सका कि जन्नत और जहन्नम किस फॉर्म ऑफ एनर्जी का नतीजा है। ये इनका पांचवा सवाल है कि क्या कयामत मेटेरियल फॉर्म ऑफ यूनिवर्स में आएगी या तमाम अकसाम की तखलीकात में? कयामत यूनिवर्स में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिएशंस के लिए महबूस हुए, आप बशरी लिबास में हमारे पास तशरीफ लाए और बाकी फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन में भी महबूस हुए होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिएशन हुई है नूर से, और बशरी सूरत में तशरीफ लाए हैं इंसानों के दरमियान, और उसकी बुनियादी वजह आप जानते हैं सभी कि अगर वो नूर की सूरत में तशरीफ लाते तो हमारे पास एक जवाब आ जाता कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम सुन्नत पर अमल कैसे कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान ही नहीं थे, वो तो मावराए इंसान थे, तो हम उस असलूब के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारें? तो इस एतराज को खत्म करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था हमारे दरमियान इंसानी सूरत में, कि हमारे पास कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी उसी अंदाज में गुजारी जिस अंदाज में कोई भी इंसान गुजार सकता है। यह और बात है कि एक आध मर्तबा फरमा दिया कि अगर मैं चाहूं तो कोहे ओहद पूरे का पूरा सोने का हो जाए। ये असल में इनका दो टुकड़ों में आ गया है सवाल। हमारे पास आप बशरी लिबास में हमारे पास तशरीफ लाए और बाकी फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन में भी माबूस हुए होंगे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें तब्दील होकर गए थे? देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलमों के लिए रहमत हैं, ये याद रखिए। रहमत है दो सेंस में, आप मेहरबान सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, वो जितनी तख्लीक है रब ताला की, जो दरिंद परिंद चरिंद नबातात जमातात, इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, जानवरों के लिए भी बड़े मेहरबान थे, दरख्तों को नुकसान पहुंचाने से मना फरमाया। जो असल चीज है कि वो रहमत है सबके लिए, वो आपकी तालीमात हैं, जो मैसेज आपने पहुंचाया। तो मबूस होने का मसला नहीं है कि उन तख्लीकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुहिम में गए। ये सातवां इनका सवाल है कि मेराज शरीफ पर आप बशरी लिबास ही में गए या बाकी लिबास में भी मेराज हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज बशरी सूरत ही में है। तो ये इंसान ने किसी मेरी ही गुफ्तगू का हवाला दिया, लेकिन मुझे याद नहीं कि इस तरह की चीज मैंने कही हो कि हम जो यहां इकट्ठे रहते हैं ये नतीजा है कहीं और हमारे इकट्ठे रहने का, जितनी चीजें यहां पेश आती हैं ये नतीजा है कहीं और अमल पेश आने का, इसके नतीजे में यहां ये कारखाना चलता दिखाई देता है। इस आलमुल असबाब का कारोबार दर हकीकत इंडिपेंडेंट नहीं है। ये गालिबन कहीं कोई किसी बात को समझने का फर्क है, ये इकट्ठे रहने की बात तो मैंने जरूर कही होगी कि तमाम रूहें आलम दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में इकट्ठी होती हैं। तो जो जो जिस रूह से मुतालिक जिस्म दुनिया में वजूद में आता है, उस रूह को आलम अरवाह से रवानगी का हुक्म होता है और फरिश्ता उस जिस्म में उस रूह को दाखिल कर देता है। यहां हम इंडिपेंडेंटली अपनी एक जिंदगी गुजारते हैं, और जब हमारा जिस्म फना होता है, मौत आती है हमें, तो रूह फिर आलम बरजुख में चली जाती है, वहां फिर इकट्ठी रहती हैं रूहें, मुख्तलिफ उसके दर्जात हैं, तो अपने अमाल के मुताबिक वहां इकट्ठी होती हैं रूहें। ये तो मैंने जरूर कहा होगा। और दूसरा ये जो है कि जितनी चीजें यहां पेश आती हैं नतीजा कहीं और अमल पेश आने का, ये गालिबन इसको यूं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि दुनिया मेरे नजदीक आखरत से ज्यादा अहम है, सिर्फ इसलिए कि मेरी आखरत का दारोमदार इस बात पर है कि जिस किस्म की जिंदगी मैंने यहां गुजारी है, जो मेरे अमाल यहां रहे हैं, उस पर बेस्ड मेरी अबदी जिंदगी होगी। तो चूंकि मेरी अबदी जिंदगी ने यहां के अमाल के मुताबिक होना है, इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये दुनिया यूं आखिरत से कहीं ज्यादा अहम है कि मैं जैसे इस दुनिया को गुजार के जाऊंगा मुझे ऐसी ही अबदी जिंदगी मिलेगी, इसलिए कि अबदी जिंदगी का फैसला रब ताला मेरे अमाल पर बेस करके करेगा और इसमें कोई शक नहीं कि उसमें उसकी रहमत उसकी मेहरबानी वो शामिल जरूर होगी, लेकिन अमाल कंसिडर होंगे मेरे। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक बेहतर अबदी जिंदगी मिल जाए तो मुझे फिर दुनियावी जिंदगी को बेहतर करना होगा। तो यूं मैं ये अर्ज करता हूं कि जो कुछ आखिरत में हमारे साथ पेश आएगा वो नतीजा होगा उस उन अमाल का जो हम यहां सरजद हमारे यहां होते हैं। तो इसलिए इस पर हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि हमारी यहां की जिंदगी बेहतर हो ताकि अबदी जिंदगी बेहतर हो जाए। देखिए मैं बार बार एक चीज अर्ज करता हूं कि हम खेल के वक्त पढ़ाई को दखल ना दें, तालीम के वक्त खेल को दखल ना दें, सोने के वक्त हम जागते ना रहें। कहने का मकसद ये है कि जो जो चीज जहां जहां मखसूस है सिर्फ उसी में करें। ये इसका ताल्लुक हमारी इज्तमाई चीजों से है जो ये गैदरिंग होती है, तो हम दुआओं के लिए इस गैदरिंग को इस्तेमाल ना करें। दुआओं का सेशन बाद में होता है तो हम दुआ के लिए उसमें अगर आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। किसी ने पूछा है कि अगर किसी की जिंदगी में माली तंगी और जाती जिंदगी में मुश्किलात आ रही हो तो क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुश्किलात आम हैं या उसने तसव्वुफ के रास्ते पर चलने की नियत की हुई है, ये उस वजह से है। ज्यादातर इसकी इस किस्म की चीजें जैसे रब ने कुरान में फरमाया कि इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती मास्वाय उसके अपने हाथ के, तो हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं अपनी बेतदबीरी से। गर्ज से मगलूब हो जाते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं जहां मुश्किलात आ जाती हैं, लालच में पड़ जाते हैं। तो आमतौर पर बेतदबीरी से होता है। तो अल्लाह की राह पर चलने से अगर तो ये मायने हैं कि दीन पर चलने से, तो ये बिल्कुल हमारी गलतफहमी है। अगर अपनी दुनिया को हम दीन के मातहत कर लेते हैं और दीन के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस किस्से में पढ़ते हैं कि अल्लाह की दोस्ती नसीब हो जाए तो वो वक्ती तौर पर हमें परखता है मुश्किलात के जरिए से कि हम अपने उस जज्बे में कितने सच्चे हैं। तो जो आदमी अल्लाह की दोस्ती कमाने के राह पर चला शायद वो तो जो भी नहीं देता कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या मेरी माली तंगी है। तो ये तो आपके सवाल का जवाब है, लेकिन अपनी तरफ से मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम इस माली तंगदस्ती से इतने घबराते क्यों हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने है, साहबा कराम की जिंदगियां हमारे सामने हैं, औलिया कराम की जिंदगियां हमारे सामने हैं। मजे की बात यह है कि मैं चाहता यह हूं कि मैं वली अल्लाह बन जाऊं, लेकिन जब उनकी जिंदगियों वाला मामला मुझे पेश आता है तो मैं घबराने लगता हूं। एक कश्ती में पांव मुझे रखना चाहिए, ना कि दोनों कश्तियों में। दो कश्तियों में पांव रख के इंसान आमतौर पर गिरता है। इंशाअल्लाह ताला बाकी सवालात का जवाब आइंदा नशिस्त में। अस्सलाम वालेकुम।